मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत प्रेम भरा अभिवादन। मित्रों, आज 11 सितंबर 2015 है और आज के इस afis.com में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन चार साथियों के नाम हैं हिमांशु गुप्ता पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, वीरेंद्र कुमार श्रीगंगानगर राजस्थान से, कुमुद सहरसा बिहार से और संदीप कुमार रांची से। तो हिमांशु, वीरेंद्र, कुमुद और संदीप, आप चारों साथियों का मैं अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि मैं लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रोजाना ही आप लोगों को याद दिलाता हूं, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो अभी अक्टूबर की क्लासेस में आने वाले हैं और फिर बाद में फरवरी की क्लासेस में आने वाले हैं, कि मित्रों, आप अपनी मानसिक स्थिति को बहुत ही क्लियर करें, साफ रखें, मजबूत बनाएं और खासकर अपने अंदर ये भावना पैदा करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है, ज्यादा से ज्यादा लेकर आना है। मित्रों, मैं एक बात तो है कि ये विश्वास दिला सकता हूं कि यदि थोड़ा भी आप लोगों का साथ मिला तो निश्चित रूप से ये जो 15 दिन होंगे आपकी जिंदगी के बहुत ही कीमती, मूल्यवान और अविस्मरणीय दिन होंगे। आप देखेंगे कि इन 15 दिनों को भूलना, इसके प्रभाव से पूरी तरह से अलग रह पाना, मुझे लगता है कि आप में से किसी के लिए भी मुश्किल होगा, बशर्ते कि आप उसी तैयारी के साथ आएं, उसी मानसिकता के साथ आएं। और इसी तैयारी और मानसिकता की बात फिलहाल हम लोग लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में कर भी रहे हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से की शुरुआत करूं, एक छोटी सी सूचना जो लगभग हर शुक्रवार के दिन मैं आप लोगों को देता हूं कि शनिवार और इतवार को डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आएगा, लेकिन सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज पढ़ने को मिलेंगी नॉलेज सेंटर पर, और साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र के वे आर्टिकल्स जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लगेंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जहां तक फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट का सवाल है, उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस मिलेगा। पिछला स्पेशल ऑडियो गाइडेंस पारिभाषिक शब्दों पर तैयार किया गया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रयोग से हमारी भाषा में एक चमक आ जाती है, प्रभाव पैदा होता है और हम कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह भी पाते हैं। पढ़ने में भी उन शब्दों का काफी इस्तेमाल होता है, तो यदि हम उन शब्दों के अर्थों को व्यापकता के साथ जान लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो समझ है गहरी हो जाती है। तो पहला स्पेशल ऑडियो गाइडेंस इससे जो रिलेटेड था वो उनको प्रोवाइड किया गया है, और इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो अपने मेल एक्सेस करते रहेंगे। मित्रों, अब इस सूचना के बाद मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में, जिसमें हम लोग खासकर हनुमान चालीसा के जो शुरू की जो चार पंक्तियां हैं उसी की व्याख्या कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट्स कुछ अच्छे लगते हो तो आप लोग बिल्कुल मुझे बताएं। कुछ स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट सुझाए भी हैं, उन्हें मैं अब नेक्स्ट वीक की शुरुआत से टेकअप करूंगा। फिलहाल चूंकि ये इसी से ही जुड़ा हुआ प्रसंग था, इसकी जो चारों पंक्तियां हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से गुथी हुई हैं, इसलिए मैं इसे अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, जहां तक है मैं समझता हूं कि आप लोगों ने एक गुरु की जो महत्ता है, गुरु के अर्थ का जो विस्तार है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, और साथ ही इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से आत्मसात कर लिया होगा कि जब भी यदि आपको कोई चीज पानी है तो उसमें आपको अपनी किस तरह की मानसिकता बनानी पड़ती है। मित्रों, जब मैं इस तरह की मानसिकता की बात कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता, इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के अपने लोएस्ट लेवल पर चले जाएं। इसका कॉन्फिडेंस से कहीं कुछ लेना देना नहीं है, यह सिर्फ एक भाव भूमि है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं खाली हूं, मुझे सीखना है, ये एक ऐसी भावना है। जैसे ही आप अपने जानने के ईगो को खत्म कर देते हैं ऑटोमेटिक अपने आप ये भावना आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में आ जाएं कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आप देखिए कि तुलसीदास आगे चल करके इन चार पंक्तियों की तीसरी पंक्ति में क्या कहते हैं। पहला शब्द है बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मित्र इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। वो क्या कहते हैं, अपने आप को कहने की बुद्धिहीन तनु जान के मैं अपने इस शरीर को अपने आप को बुद्धिहीन मान रहा हूं, मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मुझे कुछ भी नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे सच में कुछ भी नहीं आता, लेकिन जो चीज मैं आपके पास सीखने आया हूं, जो चीज मैं जानना चाहता हूं, इनफैक्ट सच है कि उसके बारे में मुझे कुछ नहीं आता। जैसे दोस्तों मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं। आप सब अभी अक्टूबर की क्लास में आ रहे हैं, बाद में फरवरी की क्लास में आप सब आएंगे। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, किसी ने ज्योग्राफी में एमए या एमएससी भी कहीं कहीं डिग्री दी जाती है, एमएससी किया हुआ होगा, किसी ने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया होगा, मतलब अलग इकोनॉमिक्स में किसी ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पता लगा कि ग्रेजुएशन किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। इस तरीके से एक कोई भी विषय ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आपकी जानकारी मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी होगी, होती ही है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, होगी ही। आप अभी उसको पढ़ रहे हैं, आप उसकी लेटेस्ट जानकारी रख रहे हैं, वो चीजें दिमाग में आपकी बिल्कुल ताजी हैं, अभी आपने एग्जाम दिया है, आप में वो जोश है, तो विस्तार में आपके पास उसकी जानकारी ज्यादा है। लेकिन जहां तक उसके अप्लाइड का सवाल होगा, उसके व्यावहारिक पक्ष का जिसे मैं कहता हूं, या उसकी गहराई में जाने का सवाल होगा, क्योंकि उसमें जीवन के व्यापक अनुभव अभी नहीं जुड़े हैं, तो वहां हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी कमी हो, लेकिन वो भी मायने नहीं रखती। मैं कुल मिलाकर के ये मानता हूं कि आपकी जानकारी उसमें ज्यादा है, राइट। अब आपको सोचना यह है, जो बुद्धिहीन है मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि यहां जो बुद्धिहीन कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। आप यहां जो क्लास में आ रहे हैं वो ज्ञान लेने नहीं आ रहे हैं। आप ज्योग्राफी पढ़ने आ रहे हैं? नहीं। आप हिस्ट्री पढ़ने आ रहे हैं? नहीं। आप इकोनॉमिक्स पढ़ने आ रहे हैं? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। तो फिर आप क्या करने आ रहे हैं? आप बेसिकली बड़े इशू पर जाइए, आप इस बात को जानने आ रहे हैं कि आईएएस की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, आईएएस की जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए। यहां सब्जेक्ट नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। सब्जेक्ट तो इसलिए है क्योंकि उसकी तैयारी का वो हिस्सा है। यहां आप सब्जेक्ट पढ़ने नहीं आ रहे हैं जिसके बारे में आपकी जानकारी, यहां जितने भी लोग आएंगे, कुछ मैं गेस्ट फैकल्टी भी बहुत रेनाउंड है अपने अपने क्षेत्रों के, उनसे भी आप लोगों की बातचीत कराऊंगा, तो उनकी तुलना में आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन आपके पास व्यवहार नहीं, व्यावहारिक समझ नहीं है, आपके पास उसका अनुभव नहीं है, उसका जो अप्लाइड फॉर्म है वो नहीं है, और आप ये नहीं जानते कि ये जो आपके हाथ में औजार है, सब्जेक्ट के नॉलेज का जो औजार है, हिस्ट्री के रूप में, फिजिक्स के रूप में, ज्योग्राफी के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में, सोशियोलॉजी के रूप में, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, कि ये जो औजार है, इस औजार का इस्तेमाल सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो ताला लगा हुआ है उसमें कैसे किया जाए, उस चाबी को आप लगाना नहीं जान रहे, तो आप वो सीखने आ रहे हैं। यहां आप बेसिकली वो टेक्निक सीखने आ रहे हैं और उसको सिखाने के लिए सब्जेक्ट का सहारा लिया जा रहा है। तो आप यहां अगर अपना मूल्यांकन या एकेडमी का मूल्यांकन विषय के ज्ञान से करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो आप बुद्धिहीन नहीं हैं, बहुत बुद्धिवान हैं। लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं उन्होंने सिविल सर्विस क्वालिफाई किया हुआ है, वो जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब आप ये सोचेंगे कि भैया ये तो बने हुए हैं और वो बने हुए हैं जो हमें बनना है, तो ये हमें रास्ता ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे, तब आपको एहसास होगा कि नहीं, तब तो फिर हम बुद्धिहीन हैं। और जैसे ही आप ये को लगेगा कि नहीं, इस मामले में तो हमको कुछ नहीं मालूम, और मालूम भी है तो थोड़ा सा मालूम है, मतलब इनको तो हमसे ज्यादा मालूम है, तब आप देखेंगे कि जो आपकी ग्रैस्पिंग पावर है, वो कितनी ज्यादा हो जाएगी, कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और तभी आप अपने इन 15 दिनों को मूल्यवान बना सकेंगे। मित्रों, तो यहां जो तुलसीदास जी ने कहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके, कि मैं जो आपसे सीखना चाह रहा हूं, जो आपसे जानना चाह रहा हूं, उसके मामले में मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, और इसलिए मैं आपको याद कर रहा हूं पवन कुमार, हे हनुमान मैं आपको याद कर रहा हूं, सुमिरो पवन कुमार। और फिर उनसे मांग क्या रहे हैं, बल बुद्धि विद्या दे हूं मोही, हर हूं कलेश विकार। मित्रों, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब वो पहली चीज क्या मांग रहे हैं, बल। यहां बल का मतलब फिजिकल पावर से नहीं है, यहां बल का मतलब है स्वस्थ, हेल्दी बॉडी। याद रखिए कि भारत ने शुरू से हेल्दी बॉडी को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, शारीरिक स्वस्थता को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। इसीलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने ऋग्वेद में सीधे सीधे प्रार्थनाएं की गई हैं कि हे इंद्रदेव, तुम बरसो और तुम्हारे बरसने से ये पृथ्वी हरी भरी होगी। जब पृथ्वी हरी भरी होगी तो हमारी गायों को भोजन मिलेगा, और उस भोजन के कारण फिर हमारी गायों के थनों में दूध उतरेगा, ज्यादा दूध उतरेगा, और उस दूध को पीकर हमारी संतानें बलिष्ठ होंगी। ये प्रार्थना है, हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी, शारीरिक रूप से स्वस्थ। यहां ताकत से मतलब नहीं है, ताकत लेकर के आप क्या कर लेंगे, सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता है, ताकत से पहाड़ नहीं तोड़े जाते, हां हिम्मत से पहाड़ तोड़े जाते हैं। पता नहीं दशरथ मांझी के पास कितनी ताकत थी, ताकत तो नहीं ही होगी, और उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर उसी गांव में लोग होंगे, आज से 50-100-200 साल पहले भी होते रहे होंगे, लेकिन कोई नहीं तोड़ सका, लेकिन मांझी ने तोड़ा। तो ताकत कहां की ताकत, ये शरीर की ताकत नहीं, ये तो शरीर की स्वस्थता है। ताकत जो है वो मस्तिष्क में होती है, उसके बारे में हम लोग आगे चल करके कभी बात करेंगे। बल बुद्धि, ये जो बुद्धि है, जिस तरह से स्वस्थ शरीर, बल स्वस्थ शरीर है, उसी तरह से बुद्धि स्वस्थ मानसिकता है। स्वस्थ मानसिकता का मतलब है कि आप किसी भी चीज को सही संदर्भों में देख पा रहे हैं, जैसे उस चीज को देखा जाना चाहिए, आप उसी रूप में देख रहे हैं, इमोशंस के ग्रिप में नहीं है कि आपका मन कर रहा है तो आपको यह चीज अच्छी लग रही है, और जब मन नहीं कर रहा है तो वही चीज आपको बेकार लगने लगी है। मतलब हम अपने मन के द्वारा इतने ज्यादा नियंत्रित होते हैं कि वो जो कहता है हम वही मानते हैं। ये अस्वस्थ मानसिकता का प्रतीक है। सत्य को सत्य की तरह देखने का साहस, देखने की दृष्टि, ये स्वस्थ मानसिकता कहलाती है। यहां वही बुद्धि है। और विद्या, विद्या का मतलब है विवेक। विवेक यानी कि सही और गलत का निर्णय करने की सही क्षमता मुझे प्रदान करो। देखिए, बुद्धि मेरे पास बहुत हो सकती है, मानसिक रूप से मैं स्वस्थ भी हो सकता हूं और बहुत ज्ञानी भी हो सकता हूं, सारे ग्रंथ पुराण विषय सब कुछ मालूम हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं सही और गलत का निर्णय कर ही ना पाता हूं, और जब भी निर्णय कर रहा हूं तब गलत ही निर्णय कर रहा हूं, तो फिर मेरा ये ज्ञान तो धरा रह जाएगा, क्या होगा। तो जिंदगी में जो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, वो डिसीजन मेकिंग होती है, कि आप निर्णय क्या लेते हैं। जो हमारी जो जिंदगी है, अभी की जो जिंदगी है, वो बिल्कुल वैसी है जैसी कि हमने निर्णय लिए हैं, याद रखिए। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मित्रों, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, हरहु हरण होगा, हरण कीजिए, कलेश का मतलब होता है जो मानसिक रोग होते हैं, मानसिक रोग, कलेश, है ना, वो बड़ी कलेशी है, वो बड़ा कलेश करता है, हम लोग कहते हैं ना, तो कलेश का मतलब ये नहीं कि मारपीट कर रहा है, मतलब चीची चीची कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, झगड़े करता है, ये है कलेश, मतलब मानसिक। और विकार शारीरिक, ये दो शब्द हैं, इसीलिए कलेश विकार दो अलग अलग हैं। अब इसका अर्थ समझिए, जो हम गलती कर जाते हैं मेरी समझ से, और वो ये है कि जब मैं हनुमान जी से ये मांग रहा हूं कि मुझे बल बुद्धि विद्या दे दो, तो इसका मतलब यह कि ये तुम मुझको दे दो ताकि मैं अपने कलेश और विकार को दूर कर सकूं। ये नहीं कि तुम मुझे ये भी दे दो और ये देने के बाद फिर दूसरा काम ये करो कि मेरे जो मानसिक विकार हैं और जो शारीरिक विकार हैं इनको दूर करो, नॉट एट ऑल। वो तो कह रहे कि मुझे ये दे दो, बल बुद्धि विद्या दे दो, ताकि मैं इनके माध्यम से फिर मेरी जो मानसिक परेशानियां हैं और जो शारीरिक परेशानियां हैं उनको दूर कर सकूं, क्योंकि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा और जिसमें विवेक होगा, निर्णय लेने की, सही निर्णय लेने की क्षमता होगी, वो अपने क्लेश खुद ही दूर करता रहेगा, उसको दूसरे से दूर कराने की जरूरत ही नहीं है। और सच बात तो ये है कि क्लेश और विकार उसके पास आएंगे ही नहीं, और जो थोड़े बहुत आ जाएंगे उनका हल वो खुद ढूंढ लेगा। इसीलिए श्री गुरु की बात कही है कि यदि गुरु से वो सही ज्ञान मिल गया तो फिर किसी तरह की कोई तकलीफ रह ही नहीं जाएगी। और तभी तो कबीरदास जी ने कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत मैंने हनुमान चालीसा की शुरू की चार पंक्तियों को लेकर के आपसे चर्चा की है। अब मैं देखूंगा आप लोग जो मुझे विषय सुझाएंगे मैं उन विषयों पर बात करूंगा, और जब मेरे पास कोई दूसरा विषय नहीं होगा तब मैं हनुमान चालीसा पर बात करूंगा, और भी जो चीज आप लोगों के लिए उपयोगी होगी उन पर बात करूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा और वो ये है कि मुझे मालूम है कि ये जो ऑडियो है वो बहुत से फैमिली के मेंबर्स भी आपके सुनते हैं। अगर आप मेरी बात मान सकें तो ये जो किताब है जीवन का महामंत्र हनुमान चालीसा, ये केवल आपके लिए ही नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए है, सबके लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये किताब आपके घर में रहेगी तो डेफिनेटली जब भी मौका मिलेगा आपके पेरेंट्स और भी जो दूसरे लोग हैं उठा उठा करके पढ़ेंगे, नो डाउट एंजॉय तो करेंगे ही, साथ ही उन्हें सही मायने में हनुमान चालीसा का जो भावार्थ है वो भी समझ में आएगा। और जैसे ही अर्थ समझ में आ जाते हैं शब्द मंत्र बन जाते हैं। मित्रों, इसी के साथ ही आज के लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को मैं अब यहीं समाप्त करता हूं। अब मैं आता हूं हमारे हार्डकोर न्यूज वाले हिस्से में और कल के आकाशवाणी के समाचार पर। मित्रों, आप लोगों ने समाचार सुना ही होगा, सच पूछे तो कल के आकाशवाणी के समाचार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर के हम बड़े विस्तार के साथ आज बातें कर सकें। एक खबर तो वही थी कि हमारे देश के जो प्रमुख हैं, डीजी डायरेक्टर जनरल हैं बीएसएफ के, और वहां के जो प्रमुख हैं जो सीमा पर एक तरीके से जो एक पैरामिलिट्री फोर्स जो रहती है और जो सीमा पर तैनात है हमारे दोनों साइड के जो सेनाएं हैं, सेना तो नहीं कहना चाहिए, तो उनके प्रमुख जो हैं वे आज बातचीत कर रहे हैं। और उसमें ये बताने की कोशिश, कल बातचीत हुई है और अभी भी बातचीत चल रही है, उसमें ये कोशिश हो रही है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो सीमा रेखा है उस पर जो संघर्ष विराम है उसका उल्लंघन न हो, मतलब उस पर शांति बनी रहे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से पाकिस्तान लगातार उस पर गोलाबारी, वहां गोलाबारी करके, और जो हमारी सीमा पर जो आबादी रह रही है वो बहुत ज्यादा भयभीत है, कुछ लोग मारे भी गए हैं, और इससे दोनों देशों में अनावश्यक रूप से तनाव भी बढ़ता है। अखबारों में भी ये विश्वास व्यक्त किया गया है कि शायद बातचीत सार्थक होगी, सफल होगी और हमारी सीमा पर एक तरह से शांति की स्थिति आएगी। दूसरी जो खबर थी मित्रों, उसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी, वो था विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। उसमें उन्होंने भाषा के बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें कही, वो अखबारों में ज्यादा है, न्यूज में उतना ज्यादा नहीं लिया गया, क्योंकि भोपाल में उनका जो दूसरा कार्यक्रम था उसको ज्यादा उस स्थान दिया गया है। लेकिन उन्होंने जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी वो ये है दोस्तों कि आने वाले दिनों में तीन भाषाएं केवल जीवित रहेंगी, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि भाषाओं पर दबाव बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पास भी जो कितने मेल आते हैं, जो बेसिकली हिंदी भाषा हिंदी होती है और लिपि उनकी रोमन होती है, और सच पूछे तो मुझे पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। जबकि बहुत से ऐसे मेल भी होते हैं जो भाषा हिंदी होती है और वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो चलिए, 10वें हिंदी सम्मेलन में मैं अपने श्रोताओं से कम यही संकल्प लेने की बात कहता हूं, या कह लीजिए कि एक रिक्वेस्ट करता हूं, या उन्हें एक सलाह देता हूं कि यदि वो हिंदी भाषा में मुझे मेल भेज रहे हैं तो क्यों नहीं देवनागरी लिपि में ही भेजते, बड़ी अच्छे से स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में टाइप हो सकता है और आप मैसेज भेज सकते हैं। हाँ, अगर आप इंग्लिश में भेज रहे हैं मुझे कोई एतराज नहीं, आप फिर इंग्लिश ही लैंग्वेज भी इंग्लिश यूज करें, अदरवाइज पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये जो उन्होंने कही है कि अंग्रेजी भाषा चीनी भाषा और हिंदी भाषा, ये तीन भाषा मतलब सरवाइव करेंगे आगे चल करके। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही है उनके दिमाग में एक संख्या की बात रही होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि अंग्रेजी बोलने वाले तो भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी हैं, क्योंकि एक समय में जो ब्रिटेन था उसने दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्र पर राज्य किया है, और जहां जहां उनका राज्य रहा है वहां वहां वे अपनी भाषा को छोड़कर आए हैं, इसीलिए अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या बहुत है। चीन आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो दूसरी बड़ी भाषा मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं कि दूसरी बड़ी भाषा है बोलने वालों की, तो चाइनीज बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और फिर तीसरी हिंदी बोलने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो विश्व में ये तीन भाषाएं हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो ये भाषाएं रहेंगी और बाकी भाषाएं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। और मित्रों आप देख रहे हैं कि बहुत सी भाषाएं तो बिल्कुल खत्म ही हो गई हैं, खासकर जो बोलियां हैं बोलियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अब आप देखिए, सोच करके देखिए कि एक समय था जब अवधी ब्रज इन भाषाओं में कितना साहित्य लिखा गया और महान साहित्य लिखा गया, लेकिन आज अब ये केवल बोलचाल में रह गई, उस क्षेत्र के उस जनपद के लोग ही बोलते हैं, साहित्य के रूप में तो अब बहुत कम ही स्थानीय स्तर पर लेखन हो रहा होगा। तो यही होता है कि धीरे धीरे भाषा फिर होते होते तो सैकड़ों साल और हजारों साल की बात होती है, फिर वो लुप्त हो जाती है और एक तरह से साहित्यिक फॉर्म में ही रह जाती है। क्योंकि देखिए, भाषा को जीवित रखने के लिए तीन चार चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो होता है कि उसका साहित्य का लेखन होता रहे उसमें, दूसरा ये होता है कि लोगों की जुबान पर वो चलती रहे, लोग उसका उपयोग करते रहें, चौथा ये है कि राजकाज में भी उसका इस्तेमाल होता रहे, और चौथी बात ये वो होती है मित्रों, और वो ये कि राजकाज में इस्तेमाल होने के साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि उसमें अब के संदर्भ में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के लिए भी वो उपयोगी हो। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब कंप्यूटर की भाषा, एसएमएस की भाषा, अलग अलग तरह की भाषाएं हो गई हैं, तो वो कंप्यूटर की भाषा में भी उसका विकास उसी तरीके से होता रहे। और निश्चित रूप से ये तो बड़ी बात होती है कि कोई भी भाषा रोजगार का माध्यम भी बन सके, क्योंकि जैसे ही दूसरी भाषाएं रोजगार का माध्यम बनती हैं तो स्वाभाविक है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उस भाषा की तरफ ही ले जाना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स की भी जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो यही होती है कि किस तरह से हमारे बच्चे आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो इसीलिए भाषा को सही मायने में अगर आप कहें तो रोजगार से भी जोड़ा जाना बहुत जरूरी होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक भाषा के लिए आह्वान किया है, अब देखते हैं कि 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में किस तरह के प्रस्ताव पारित होते हैं, सरकार कौन कौन से कदम उठाती है, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि हिंदी भाषा को लेकर के जो उत्साह अभी की सरकार में है वह निश्चित रूप से इसे आगे ले जाने में मदद करेगा, और इस भाषा को अपनी जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए अपने ही देश में वो भी मिलेगी। तो मित्रों, न्यूज में और कुछ विशेष नहीं थी, खासकर कुछ बातें नहीं थी, जो चीजें शेयर मार्केट से जुड़ी हुई होती हैं वो लगभग रोज के उतार चढ़ाव को आप देख ही रहे हैं और उन बातों को आप समझ भी गए होंगे, और अगर आपने नहीं समझा हो तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि शेयर मार्केट की जो वर्किंग है उसको आप बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये डेली न्यूज में होता है और खासकर चूंकि ये पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है इसलिए आपकी समझ होनी चाहिए। मेरे पास बहुत से मेल आए हैं जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं शेयर मार्केट के बारे में समझाऊं। मित्र, एक तो मुझे लगता है कि आडियो के माध्यम से उसे नहीं समझाया जा सकता है ना, उसमें ग्राफ जब तक ना हो, बोर्ड पर कुछ लिखा ना जाए, बताया नहीं जाए, तब तक उसे नहीं समझाया जा सकता, इसलिए मैं अपनी 15 दिन की क्लासेज में उसे बहुत विस्तार के साथ समझाता हूं। फिर यह है कि इसको भी बहुत आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लें कि ये जो आडियो गाइडेंस है इसका जो मेन क्टर है वो करेंट अफेयर्स का है, रेडियो न्यूज और समाचार। अगर मैं आपको शेयर मार्केट समझाने लगूंगा तो उसके लिए मुझे कम से कम आधा घंटा तो चाहिए, अगर आप ठीक से समझाने की बात करते हैं तो, और अगर सिर्फ टालने की बात करते हैं तो फिर आप 5 मिनट में समझ लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा और आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा तो हम अपने 5 मिनट भी क्यों खराब करें। तो ऐसे चूंकि इसका जो चरित्र है वो करेंट पर बेस्ड है, न्यूज पर बेस्ड है, न्यूज़पेपर पर बेस्ड है, इसीलिए इसमें इतना वक्त की गुंजाइश नहीं है कि मैं शेयर मार्केट के बारे में आपको विस्तार से बता बता सकूं, लेकिन फिर भी जब कभी भी मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण घटना है और इसके बारे में बताया जाना चाहिए तो मैं आपको इशारे से उधर ले जाता हूं थोड़ी देर के लिए ही सही। मित्रों अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर में अवेलेबल हैं, वो सब आप लोग देख लेंगे। आज मैं एक विशेष न्यूज़ की बात करूंगा, मैं न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल की बात करूंगा और ये आर्टिकल जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल छपा है द रिवॉल्यूशन इन सब्सिडीज, जिसे राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने लिखा है। दोस्तों ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, आप लोगों को चाहिए कि आप इस आर्टिकल को पढ़ें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए एक बात तो मैं जो आपको बार बार याद दिलाता हूं और आपको नोट भी कर लेनी चाहिए कि यदि हमारे देश में जो भी घटनाएं घट रही हैं, यदि आपको उन घटनाओं की जो बहुत ही मूलभूत घटनाएं हैं अगर बेसिक समझ नहीं है तो सिविल सर्विस के मेंस को क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल होगा। मतलब उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर बहुत सरल होते हैं, बहुत सहज होते हैं, लेकिन बहुत ही व्यावहारिक किस्म के होते हैं। इसीलिए आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़िएगा कि आपको किसी सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा कमांड बनानी है। मित्रों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी सिविल सर्विस के प्री एग्जाम हुए हैं, प्री एग्जाम के पेपर्स को लेकर के आपको बहुत सी चीजें पढ़ने को मिलेंगी कि ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। जब आप उनको पढ़ेंगे और लिस्ट बनाएंगे कि ये क्वेश्चंस कहां कहां से पूछे गए थे, तब आपके पास वो इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी कि आपको लगेगा कि नहीं ये भी किताब पढ़नी चाहिए, ये भी किताब पढ़नी चाहिए, ये भी किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहां यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन इस मैगजीन में आया था तब इसको भी पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन इस अखबार का है तो इसको भी पढ़ना चाहिए, और आपके पास इतनी सारी इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बात दिमाग में साफ रखिए कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही मूलभूत प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही फंडामेंटल किस्म के होते हैं, बहुत ही बेसिक्स किस्म के होते हैं, और अगर कोई भी किताब होगी तो बेसिक्स की बात करेगी ही करेगी। मान लीजिए कि एक कोई प्रश्न, पर्टिकुलर प्रश्न किसी एक किताब से पूछा गया, एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो बट नेचुरल की उसी टॉपिक पर अगर कोई गाइड में लिख रहा है तो गाइड में भी उसकी चर्चा होगी, और यदि उसी टॉपिक पर कोई सब्जेक्ट की दूसरी किताब में लिख रहा है तो उसमें भी उसकी चर्चा होगी, क्योंकि वो तो बेसिक्स ही है। वहां आप भटक जाएंगे। मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको बेसिक समझ में आ जाती है तब फिर आपको प्री क्वालिफाई करना आसान हो जाता है, और बेसिक समझने के बाद जब आप उस बेसिक्स के ऊपर कंटेंट की दीवार खड़ी करने लगते हैं, इमारत खड़ी करने लगते हैं, फिर कंटेंट जुटाने लगते हैं, तब फिर आप में एक तरह से रैशनलिटी आ जाती है, आप में विश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है, और अगर एक बार आप में विश्लेषण करने की क्षमता आ गई फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इस पर नोट लिखिए, इसकी विशेषताएं बताइए, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए, ये जो शब्दावली होती है ये आपके ज्यादा मायने नहीं रखेगी, क्योंकि उन आपके पास अब कंटेंट इतना है कि उन शब्दावलियों के अर्थ को आप बिल्कुल पकड़ लेंगे, और अगर कंटेंट ही नहीं है तो चीजें आपकी पकड़ में नहीं आएंगी। तो मित्रों दो चीजें होती हैं, पहली होती है किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझना, और इसके बाद होता है फिर उस पर कंटेंट डेवलप करना, राइट। तो अब ये जो आर्टिकल है ये सब्सिडी पर बेस्ड है आर्टिकल, जैसा कि मैंने कहा। अब सब्सिडी की बेसिक्स क्या है, आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने सब्सिडी की बेसिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा है। अब आप कहेंगे यार सब्सिडी की बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे जुड़ गया, यही तो खूबसूरती है। और सच पूछे तो 15 दिन की क्लासेस में हम लोग करते क्या हैं, 15 दिन की क्लासेस में वही उसी बेसिक्स को बताने की कोशिश होती है कि आप उसको कैसे विस्तार से जाकर के देख सके। आप देखेंगे कि इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्व तो जिसका उन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ, जिसका उद्देश्य है हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी स्थापित करना, वो सब्सिडी से जुड़ा हुआ और बिल्कुल सही भी है। तो जब आप चीजों को इस तरीके से विस्तार करके देखते हैं तब आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि हां इसका उत्तर कैसे लिखा जाना है। मित्रों ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इसमें एक दो चीजें जो राजस्थान गवर्नमेंट जो करने जा रही है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मालूम है जिसको हम राशन की दुकान कहते हैं बोलचाल की भाषा में, और राजस्थान में लगभग 25,500 राशन की दुकान है। अब राजस्थान सरकार ये करने जा रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर राशन की दुकान को शिफ्ट करने जा रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब आप देखिए कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कितनी ज्यादा व्यापकता से होने लगी। पहले तो कहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में होती, सड़कें बनाई जाए, अब आप देख रहे हैं कि कुछ स्टेट ने हेल्थ के सेक्टर में शुरू कर दिया है। अब यहां जो राजस्थान सरकार है अब उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कर रही है। तो अगले साल से 5,000 राशन की दुकानें ऐसी होंगी जिन्हें अन्नपूर्णा भंडार के रूप में सामने लाया जाएगा कि वो हमेशा खुली रहेंगी, उसमें 150 तरह की चीजें मिलेंगी और इनके रेट्स जो हैं वो सरकार जो निर्धारित करेगी उस रेट्स पर सामान मिलेगा, तो हर समय वो खुली होंगी। आपको राशन की दुकान मालूम है कि हर समय नहीं खुली रहती है ना, वो तो एक आध सप्ताह खोल दिया दे दिया इसके बाद बंद होकर के वो आदमी दूसरा काम करता है। तो इस तरीके से वो ये परिवर्तन करने जा रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि वो भामाशाह कार्ड इश्यू करने जा रही है। भामाशाह कार्ड वो सब्सिडी के लिए है कि मतलब अगर आपको सब्सिडी कैश में लेनी है उसको आधार कार्ड से जोड़ देंगे, बैंक अकाउंट से जोड़ देंगे, आपको सब्सिडी कैश में आपसे पूछा जाएगा कि जो सब्सिडी आपको मिलनी है वो आप कैश में लेना चाहते हैं या सामान के रूप में लेना चाहते हैं, फिर जो भी आप चाहेंगे उस रूप में आपको वो सब्सिडी मिलेगी। और इस तरीके से उनका कहना है कि जो इसमें लीकेज होता है वो लीकेज बहुत ज्यादा रुकेगा, और प्रमाण भी है। मित्रों आपने देखा कि किस तरह से जैसे ही गैस सिलेंडर के सब्सिडी को आधार से जोड़ा गया है, शायद प्राइम मिनिस्टर ने एक दो दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि लगभग सरकार के 18,000 करोड़ रुपए की उसके कारण बचत हो गई है, क्योंकि बहुत से लोग जो गड़बड़ करते थे अब आधार कार्ड से पैसा जाने के कारण वो गड़बड़ करने की संभावना आशंका कह लीजिए कि खत्म हो जाएगी, गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो मित्रों इसको आधार बना करके ये रिवोल्यूशन इन सब्सिडी ही दिया हुआ, और मालूम है आपको कि जो सब्सिडी है वो अभी बहुत ही हॉट डिस्कशन का क्षेत्र है, क्योंकि सब्सिडी में हमारा बहुत पैसा जा रहा है। पैसा जाए, हर देश अपने यहां के कमजोर लोगों की मदद करता है, भारत अगर कर रहा है तो कोई बहुत अलग से कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो मिले तो उनको जिनको मिलना चाहिए वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये जो अब जो रिवोल्यूशन की बात हो रही है वो उन्हीं लोगों को मिल सकेगा जिनको इसकी जरूरत है, तो स्वाभाविक है कि उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठेगा, और जिनको अभी तक मिल रहा था जो उनका बंद हो जाएगा वो पैसा सरकार के पास बचेगा, तो उसका इस्तेमाल फिर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, जो सोशल वेलफेयर के हमारे जो दूसरे फील्ड हैं उनमें वो करेगी। तो मित्रों ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उन्हें आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। मित्रों अब मैं अखबारों के बारे में कुछ विशेष चर्चा नहीं करना चाहूंगा, अब मैं आता हूं मेल पर। दो बातों के मैं उत्तर देना चाहूंगा दोस्तों, इससे पहले भी मेरे पास मेल आते रहे। पहला तो यह कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं तैयारी कैसे शुरू करूं। मेरी एक किताब है जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, आप आईएएस कैसे बनेंगे। मुझे लगता है कि यदि आप एक बार उस किताब को पढ़ लें तो आपको खुद रास्ता दिखाई देने लगेगा कि आपको शुरू कैसे करना चाहिए। देखिए सिविल सर्विस की जो तैयारी हो मैकेनिकल किस्म की तैयारी नहीं है कि आप केवल पढ़ते रहेंगे और आप सफल हो जाएंगे, उसमें आपको उसकी जो टेक्निक्स हैं वो पता लगेंगी और आपके लिए मुझे लगता है कि वो काफी उपयोगी होगी। दूसरा यह है मित्रों कि बहुत से स्टूडेंट मेरे मेल से पूछते हैं कि मेरा इसमें ग्रेजुएशन में ग्रेस मार्क रहा है, मैं इस साल में इस एक उसमें मैं फेल हो गया हूं, इसमें मेरा थर्ड डिवीजन रहा है, तो मैं आईएएस में कहीं इसका गलत असर तो नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट कर दूं कि कोई भी गलत असर नहीं पड़ता है। आप प्री क्वालिफाई करते हैं और फिर मेंस क्वालिफाई करते हैं, तब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचते हैं, और इंटरव्यू बोर्ड के लोग इतने मूर्ख नहीं है, वो जानते हैं कि आपने अब अपने को इतना इंप्रूव कर लिया है, आपके अतीत से उनको कोई मतलब नहीं है, उनका सारा जोर आपके वर्तमान पर होता है और वर्तमान में आपने सिद्ध किया है। इसलिए आप लोगों के मन में जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि आपका अतीत कैसा रहा है, सारी बातें वर्तमान पर निर्भर करती हैं। तो मित्रों इसी के साथ ही अब मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं, और इन्हीं में से कुछ के नाम हैं, नवीन दुबे दिल्ली से, वसंत द्विवेदी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, प्रियंका कुमारी मुजफ्फरपुर से, शिखा राणा दमोह से, विधान बलिया से, अभिषेक जायसवाल दिल्ली से, विष्णु राठौर हरदा मध्य प्रदेश से, ब्रजेश सोनी झांसी से, कौशलेश कुमार दुबे चक्रधरपुर से, विजय कुमार रांची से और वरुण कुमार पांडे इलाहाबाद से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण तुम्हें एक दोबारा फिर से आभार और धन्यवाद कि तुमने बहुत अच्छा मेल लिखा है और तुमने ये बताया है कि किस ऑडियो को सुनने से तुम्हें क्या क्या फायदा हुआ, किस तरीके का फायदा हुआ और उसे तुमने किस नजरिए से देखा। ये कंटेंट बेस्ड मेल लिखने का तरीका है। तुमने बहुत अच्छा मेल लिखा, इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं दो दिन के लिए इजाजत चाहूंगा। सोमवार को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।